भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टपाय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयसिके। जय शिल भवाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव इंद की जय। अभी श्लोक की आवृत्ति करेंगे। स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक संख्या 17 जड़ भरत द्वारा रघुगुण को शिक्षा। बात्रुमेनम तदत पवीर्य उपेक्षा देदितम प्रमत्ता गुरोरेषणोपासनाश्रो जैव कलं समायात्मचोषमोषम् बात्रुमवेनं तद्वारवीर्यं मुमेक्ष्यादेति तमा प्रमाता गुरोरे चरणोपासनाश्रो जैव किलं समायात्ममोषम् भातृवेणं तदात्मवीर्यम् उपेक्षया देदितमप्रमत गुरोरे चरणोपासनाश्रो जैव किलं समायात्मतमोषम्। शब्दार्थ बात्रव्यम बलवान शत्रु को, एनम इस मन, तत व अभद्रम वीर्यम अत्यधिक शक्तिमान उपेक्षा उपेक्षा शास्त्र अद्यतितम वृथाई शक्ति में बढ़ा हुआ अप्रमत मोह रहित गुरु गुरु के हरे भगवान के चरण कमलों में उपासना अस्त्र उपासना रूपी अस्त्र जही जीत लो व्यकिलम झूठा मिथ्या स्वयं अपने आप आत्ममोषम जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति को प्रसन्न करने वाला अनुवाद अनिश्चित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो वह प्रबल से प्रबल होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है किंतु यह आध्यात्मिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के शरणानविंदता भगवान की सेवा रूपी शस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्क से करे। तात्पर्य श्री बाबा द्वारा, जय श्री बाबा की जय। तात्पर्य, जिस एक शस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे अथवा उसे करने के लिए कहता रहता है, अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए। मन को कर्म से आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना है। चेल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते हैं कि जगने के बाद या सोने के पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का भी यही आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। दूसरी प्रामाणिक विधि है कि गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना और ईश्वर की सेवा में लगे रहना। इससे मन स्वतः वश में आ जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है कि ब्रह्मांड भमिते कौन भाग्यवान जीव कृष्ण प्रताप पे पाए भक्ति लजा बीज। जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन प्राप्त होता है। यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो कृष्ण के अनुसार से वह मन की दासता सेवा भाव से मुक्त हो जाता है। अब ये लास्ट श्लोक है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम ग्रंथ के अंतर्गत जड़ भरत द्वारा रघुकर्ण को शिक्षा नामक 11वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूरा हुआ। ये लास्ट श्लोक है 11वां का। ओम ज्ञानतिमिरांध्रीचैतन्य मनोभीष्ट पापित मेन भूत स्वयं ददाती स्वदाति वंदेहम श्रीगुरून् श्रीवृत्तपदकम् श्रीगुरून् वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं विदं राम शरीरं साद्वैतं साहुतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता शिवसावितां ताम च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वंचा कल्पतरुभ्यो सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णवेन्द्र की जय। ये हम लोग आगे से सुनते आ रहे हैं जड़ व्रत का शिक्षा है। रघुगण को जड़ व्रत शिक्षाएं दे रहे हैं। जब तो रघुगण का ये जिज्ञासा है। रघुगण ने पहले ही जड़ व्रत को प्रणाम करके ये कहा कि गुरु मैं आपके शरण में समर्पित हूँ, मुझे आत्मक शास्त्र का उपदेश दीजिए। तो आत्मशास्त्र के लिए मन का भगवान में लगना स्थिर होना बहुत जरूरी है। मन ऐसा है उसको कहीं रोका नहीं जाता है। रोकने का मतलब है या भौतिक चीज़ों में या भगवान में, दोनों में एक चीज में लगाना है। तभी यहाँ इंद्रियों का राजा मन जन्म जन्म से भौतिक कार्यों को में लिप्त रहता है। वह इस संसार में बंधा रहता है। अभी ये सब जड़ व्रत महाराज शिक्षाएं दे रहे हैं। जड़ व्रत खुद अपने जीवन में उतारा उसने, क्योंकि जड़ व्रत आगे से भक्ति करते करते ये उसका राजा थे, राजा में भक्ति किया, आसक्ति हो गई, मुख्य शरीर में आए, उसमें भी भक्ति समण रहा। अभी जड़ व्रत परमहंस स्थिति में है। परम स्थिति का मतलब अभी भरत महाराज भौतिक कार्यों के लिए अपने को मौन कर दिया। देखो यहाँ तक रघुगण के साथ में जो बात हुई वहाँ तक की बात है, वहाँ वो भक्ति की बात शुरू की, उससे पहले वो एकदम मौन रहे, उसने कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। अभी वो डाकू लोग उसको, सरदार उसको बलि चढ़ाने के ले जा रहे थे, तो उसको नहलाया धोलाया कपड़ा पहना, उसने कोई डिमांड नहीं की थी कि मुझे ये चाहिए हो जाए, वो अपने आप तैयार हो गए। उन लोगों ने स्नान कराया, उसने कपड़ा पहनाया, माला पहनाई, तिलक किया, मगर देवी माँ ने उन लोगों को सबको काट दिया। और ये देखते हुए भी उसने वहाँ कुछ नहीं देखा, वहाँ से वो निकल गए आराम से। उसने ये नहीं सोचा कि क्यों मारा, क्यों कितने मारा, कितने बच गए, नहीं देखा, मतलब उसने मुंह खोला ही नहीं। तो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। मन को अवसर नहीं देना चाहिए। इसमें श्लोक में आया है अवसर शब्द, अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए, उसके उपेक्षा है और अवसर है। अवसर ये है, अगर मन को थोड़ा भी अवसर दिया गया तो वो इंद्रियों के द्वारा प्रबल होके, एक इंद्रिय अगर समझो कुछ गलत देखती है तो वो उसमें आके प्रवेश कर जाता है और उसको प्रबल बना देता है। जैसे अवसर दिया जाए, मेरे संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम वासना हमारे उत्पन्न करती है, जैसे पशु पक्षी संभोग करते ये करते हैं, हमको वहाँ देखना नहीं है। वहाँ अगर देख भी लिया, नज़र अटा लेना है, तो हम मन को स्थिर कर सकते हैं। अगर वहाँ मन लगा दिया तो हम भी वो स्थिति में परिवर्तित हो जाएंगे। ये मन की स्थिति यही है, तो ऐसे अवसर देना नहीं है। तो ऐसे अगर ऐसी स्थिति में मन को रहे तो मन भी हमारे आत्मा के पर आच्छादित हो जाता है। आच्छादित मतलब वो भी सोचने लगता है कि हम भी शरीर हैं। तो इस स्थिति में मन को भगवान के भक्ति में लगा के आत्मा की सहाय के लिए उसको तैयार करना है। आत्मा की सहाय क्या है? आत्मा का खोराक है भगवान का नाम, भगवान का श्रवण। तो उनमें सहाय करने के लिए, आत्मा की सहाय करने के लिए मन को लगाना है। अभी यहाँ हम लोग साक्षात वेदों द्वारा स्तुति है, वेद स्तुति करते हैं। दसम छंद में है, दस उत्तरार्ध में 87-33 श्लोक है। जे तस्य कयो वेदांत स्तरंग ये यतन्ति यतुमनि लोलमुपासिदम् व्यसनान चांदमीन स्वाय सुगुरु शरणम वणिजयवा सनत कृत कणार्दा जलोदो। यह मन की स्थिति, मन की स्थिति है कि मन ऐसे उसलंग, जैसे उसलंग घोड़ा है, उसलंग घोड़ा कैसा होता है, अगर उसको लगाम नहीं दी तो अपने मन पसंदता से घूमता रहेगा। और वैसे भी उत्तम घोड़ा लगाम लगाने के बाद भी सवार होने नहीं देता है, सवारी को गिरा देता है, सवार जो सवार है उसको। यह है मन की स्थिति। ये उत्तम घोड़ा मतलब बिगड़ा हुआ घोड़ा है, मन बिगड़ा हुआ है, तो उसको ठिकाने लाने पे ले गए। यहाँ कहा गया है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई भौतिक इंद्रियों और श्वास से भी अगर उसको जीतना चाहे तो भी उसको वश नहीं कर पाते हैं, ये बताया गया है। तो उसके लिए क्या करना है? तो बोले इसके लिए जो भक्ति है, पेमा भक्ति, जो मुक्ति का पक्व फल है, उसको हम प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है। तो उसको क्या कोशिश करना है? विद्रोही जो मन है अपना, विद्रोही मन उत्तलंग घोड़ा जो है, वो विद्रोही मन को उसमें मनाना है, लगाना है, मगर फिर भी वो उसमें लगता नहीं है, मुश्किल है। तभी जाके ये कहते हैं कि इसको जब मनुष्य इंद्रियों भक्ति तृप्ति के अपने लत को हटाकर आध्यात्मिक जीवन में लगाता है, अपनी जो लत है इंद्रियों की लत क्या है, नाक का कान का सब गलत देखना, गलत सुनना, गलत सुनना, ये सब लत है, उसको हटा के, लत को हटा के भगवान की सेवा में लगाना। बाहर की सेवा मतलब ये जब सब इंद्रिया का भी कार्य है, ऐसे ही रुकेगा जब भी भगवान में लगाओगे। तो ये स्थिति हमारी भगवान के लिए उत्पन्न करनी है। तो ये किंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरु ही, हाँ, आध्यात्मिक में लगाना उस तरह आनंद का आस्वादन करना है, और ऐसा कर सकते हैं किंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरु की कृपा से वह अवसर आस्वादन कृपा से आस्वादन किया जाता है। यहाँ बताया है नाविक व्यापारी लोग एक नाव को लेके समुद्र में जाते हैं, वो साहस करते हैं व्यापारी है, वो उसको नाविक नहीं लगाते हैं, तो समुद्र के अंदर अगाध जल है, नाविक नहीं है, वो नाव कहाँ जाएगी, कहाँ डूबेगी, कोई पता नहीं। तो ऐसे हमारे जो भवसागर जो संसार में हमारे लिए नाविक का जो रूप है वो गुरु है, कर्णधार। तो हमें गुरु की सहायता के बिना हजारों हजारों कष्ट आ सकता है, तो इसलिए हमें भक्ति करते करते गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु में लगने हमें ये कार्य करना है। तो ऐसे मन को हम स्थिर कर सकते हैं, वरना हमारे ये मुश्किल है। यहाँ बताया गया है ब्रह्मांड भमिते कौन भाग्यवान गुरु कृष्ण पतावे पाए भक्ति रजा बीज। जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त करता है तो मनुष्य का असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। यदि यह गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो कृष्ण अनुग्रह करते हैं और दास सेवा भाव से मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये जो दास सेवा किसकी है, मन की बात बता रहे हैं, तो उसकी सेवा करना बंद हो जाएगी गुरु की कृपा से। अभी यहाँ हम एक प्रसंग लेंगे, जब भगवान ना अपना चैतन्य महाप्रभु के पार्षद पद्म मिश्र भक्त है, उसके पास आए महाप्रभु के पास, बोले प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुनना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो कथा नहीं कहता हूँ नहीं जानता हूँ, आप इन्हें रामानंद के पास चले जाइए, वो आपको कथा सुनाएंगे। तो पद्म मिश्र रामानंद के पास चले गए, वहाँ बैठ गए, जाके उसके सेवक ने बैठाया और पद्म रामानंद राय को समाचार नहीं दिया कि पद्म मिश्र करे आए हैं करके। तो रामानंद राय क्या कर रहे हैं करके वो पद्म मिश्र को बता रहे हैं, उसका सेवक। बोले रामानंद राय दो सुंदरिया है, उसको तेल मालिश कर रहे, एक एक अंग को मालिश करके उसको उभरा रहे, उसको स्नान करा रहे, आभूषण पहना रहे। इस स्थिति में लास्ट में ये बोले उसको तैयार करके पूरा कंप्लीट प्रसाद वसाद खिला के उसको भेज दिया। तभी रामानंद राय फ्री हुए, मतलब वहाँ से निकले, आए उनके पास पद्म मिश्र के, बोले मैं क्या आपकी सेवा करूँ। तो पद्म मिश्र कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो ऐसे आपके दर्शन के लिए आया था, आपका दर्शन हो गया, अभी कथा की बात उसने वहाँ नहीं की, क्यों थोड़ा लेट भी हो गया था, पता नहीं उसके मन में क्या बात आई, तो वहाँ से निकल गए प्रणाम करके। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में वो गए वहाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि भाई आपने कथा सुनी रामानंद राय से, तो उसने बता दिया ऐसी ऐसी बात है। तभी रामानंद राय अपना महाप्रभु बताते हैं कि ये बता रहे रामानंद यार का सुन सर्वजन, रामानंद क्या कह रहे, सब लोग सुनिए, कान खोल के सुनिए, सबको बोला सुना रहे। बोले रामानंद राय कह सुन सर्वजन, कई बार कथा कहे आचार्य कथन। रामानंद राय को बता रहे हैं मध्य मिश्र को, सभी लोग कृपा रामानंद राय के विषय से हाथों को सुनो, इनकी अद्भुत तथा असामान्य वार्ता है। ये स्वयं चैतन्य बाबू बता रहे हैं। क्या वार्ता है? एके देवदासी यार सुंदरी तरुणी, एके देवदासी यार सुंदरी तरुणी, तार सब अंग सेवे करना अपनी। दोनों पेशेवर देवदासिया थी और सुंदरी थी, और उनके तरुणिया भी तरुण थी एकदम। तरुण यानी समझो ने के 16 17 18 साल की जो उम्र की होती है उसको तरुणी बोलते हैं, तो तरुणी एकदम तरुणी थी। फिर भी रामानंद राय उनके शरीर में अपने हाथ से तेल की मालिश किया करते थे। तेल की मालिश करते करते उसमें कई दिनों उसको करना पड़ता है। जगन्नाथ यात्रा जब शुरू होती है उसके पहले उसमें दो देवी दासियों को भगवान के सामने नाच कीर्तन करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए वहाँ उसको तैयार किया जाता था जगन्नाथ। अभी भी चल रहा है, हम यहाँ रथयात्रा निकालते तो यहाँ भी लाते हैं भाई, वो भगवान के सामने नाचे नृत्य करे भगवान को खुश करने के लिए। अभी वो इतना उसका शरीर कमजोर होता है, उसको एक एक अंग को मालिश करके अपने हाथ से और उसको रुस फुस बनाते हैं और ऐसे करके करके उसको एकदम तैयार करते हैं। कई महीने लग जाते हैं उसको तैयार करने में। तो रामानंद राय अपने हाथ से ये कार्य करते थे। देखो रामानंद राय का क्या, स्नानादि कराए पराए वास आभूषण, अपने हाथ से स्नान वगैरह कराते थे और आभूषण वगैरह जवेरात आभूषण वस्त्र वगैरह पहनाते थे हाथ से अपने। गुह्य अंगोरे ता दर्शन स्पर्श, उनके गुह्य अंगों को देखते थे और स्पर्श भी करते थे। ये रामानंद राय का ये स्थिति है। देखो रामानंद एक कितना निष्ठा है अपनी भक्ति में और रामानंद की कितनी भक्ति है। ऐसे हुए भी महाप्रभु यहाँ बताते हैं फिर भी उसका मन सलायमान नहीं हुआ है, ये स्थिति है उनकी। तो भी निराकार राम रामानंद मन नाना भाग्यधर तार कराए शिक्षण, तो भी रामानंद राय मन के कभी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कि चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं सब सामने नहीं आता, रामानंद राय के विकार नहीं आता था। अतिवे उन कन्याओं को यह शिक्षा देते कि भाव के सारे लक्षणों को कैसे प्रसिद्ध करें। अभी रामानंद राय उसके बाद उसको शिक्षा क्या देते थे कि ये जो देवी दासी है सब दोनों, उसको ऐसा भाव कैसे भगवान के सामने कैसा भाव से नाचना, क्या भावना वो अपने करके उसको दिखाते थे ऐसा ऐसा करके। अभी तभी रामानंद ने क्या सोचते थे, ये दोनों वज की गोपियां है और रामानंद खुद को अपने को दासी रूप में उसकी सेवा कर रहे हैं और ये सब उसको नृत्य वगैरह सिखा रहे हैं, उसका कर रहे हैं। तो ये रामानंद राय की स्थिति है। निर्वकार है मन काष्ठ पाषाण से मन, आचार्य तरुणी स्पर्शे निविकार मन, उनका मन काष्ठ पत्थर की तरह एकदम मतलब उनका मन एकदम काष्ठ की तरह पत्थर की तरह था, मतलब हिलने डुलने वाला मन नहीं था। ऐसी स्थिति में कोई भी हिल डुल सकता है, रामानंद राय इससे परे थे। तब ऐसी तरुणिया का स्पर्श करते हैं तो भी उसका मन कभी सलायमान नहीं हुआ। तो एक रामानंद है अधिकार ताहे जानी अपकृत देह ताहार, ये सिर्फ रामानंद राय का ही अधिकार है। हम तो खाली स्मरण कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसके गुणों को, मगर उसका अनुकरण करने का हमारा अधिकार नहीं है। अगर अनुकरण करेंगे तो वो उसकी स्थिति गलत हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। ये सब शास्त्र का उपदेश है। भागवत शास्त्र में भी बताया है, भक्ति सिद्धांत सरदार जो कहते हैं कि जब भगवान की रास लीला का दर्शन करते हैं तो क्या स्थिति होती है, बोले कोई भी मनुष्य कोई भी उसको सुनता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है, और भौतिक मनुष्य काम वासना से भरा हुआ हो उसका भी मन साफ हो जाता है। तो ये है शास्त्र का अपना रास का लीला की महिमा। तो ऐसे स्थिति में वो शास्त्र का उपदेश देते, उपदेश उदाहरण देते हैं अपना भक्ति सिद्धांत हरि ठाकुर। तो यहाँ अभी हम एक बात है कि अपना निमि महाराज जनक महाराज के राज में जनक महाराज हमेशा कथा सुनते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उसके पास आया कोई साधु, बोले आप मोक्ष विद्या जानते हैं, मोक्ष की विद्या हमको मोक्ष विद्या सिखाइए। बोला मोक्ष विद्या का लिए आपको एक परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको सिखाऊंगा। बोला ठीक है। बोला ये क्या करें, तो एक तेल की बाटी भर के बुलाई, तेल की बाटी और सर पे रख दिया, और दो सिपाहियों को साथ में रख दिया तलवार लेके। बोला ये बाटी में से एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, और एक बूंद भी तेल गिर गया या वाटी गिर गई तो आपका सबको उसी टाइम ये हमारे सिपाही गला काट देंगे। तो पूरा भ्रमण करके आया, नहीं तेल गिरा नहीं वाटी गिरी, सैनिकों साथ में चल रहे हैं। बोला महाराज मैं तो आ गया, अभी मुझे मोक्ष विद्या सिखाई। बोला यही मोक्ष विद्या आपकी। बोला कैसे। बोला यही स्थिति में आपको कृष्ण में मन लगाना है, अगर सामने मृत्यु हो और भगवान में मन लगाओ तो आपका ये मोक्ष निश्चित है। तो ये है हमारी मोक्ष विद्या। तो जनक महाराज ने ऐसे मोक्ष विद्या इनको सिखाई। तो ऐसे हमारा यहाँ रघुगण का जो जड़ भरत का महाराज का उपदेश है, ये रघुगण के लिए है। रघुगण बहुत उत्साहित है और भी आगे पूछ रहे हैं हमके क्या करना है, अभी तो उसका गुणगान करेंगे आगे। तो रघुगण तो ये भौतिक स्थिति से बचने के लिए मन को हमारा भगवान में लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना है। भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे तो हमारी ये पूरी इंद्रियों को विफल कर देंगे। मन इतना बलवान है, इतना बलवान है, दे बताया नहीं था। उस कलंग घोड़ा मन ऐसा ही है, वो काबू में नहीं आता है। अगर उसको सही जगह पे भगवान की सेवा में न लगाओ तो भटक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो अभी आज एक प्रसंग और भी है, बताया था हमको जानु सप्तमी। तो जानु सप्तमी है, जानु मुनि थे वो। जब राजा भगीरथ उसके पुत्र उसके पितरों को जब कपिल देव ने देखा था, वो जल गए थे, भस्म हो गए थे, तो उसको उद्धार करने के लिए उसके परंपरा में कहीं गंगा की प्रार्थना कर रहे थे कि गंगा प्रकट हो और हमारे पितरों को जल अर्पण करेंगे, गंगा उसमें जाएगी तो उसका उद्धार हो जाएगा उसका ऐसा। और गंगा जी का जल का पवित्र है, गंगा जी का भगवान के शरणों से निकली है तो वो शरण से उसका उद्धार हो जाएगा। तो भगीरथ ने गंगा जी को उतारे, शंकर जी को मनाया और गंगा जी को लेके आ रहे थे घोड़े पे सवार होके। तो जाहनु मुनि जहाँ रहते थे, जाहनु मुनि वहाँ से वो भगीरथी गुजर रही थी, वो भगे रहते गंगा। तो जानू मुनि हमेशा तीन संध्या गायत्री करते थे और आसमान और समस्मा रखी हुई थी। वो नदी ने बहा लिया, अभी बह गई नदी तो जानू मुनि को क्रोध आया, क्रोध आने के बाद उसको पूरा पी लिया, गंगा को ही पी गई। अभी ये अपना भगीरथ बड़े चिंता में पड़ गए, बोले अभी मेरा पितृ का उद्धार कैसे करूंगा, ये गंगा कहाँ गए, चिंतित हो गए। उसको पता चला ये तो जानू मुनि पी गए हैं, तो उसको उसकी पूजा की, उसको मनाए। तभी जानू मुनि ने अपनी जांग से वो नदी को प्रवाहित किया, तो जांग से निकली उसको जाह्नवी बोलते हैं, जाह्नवी। और कई जगह में उसको डिटेल दिया हुआ है कर्ण से निकली हुई है, कान से। तो ये दो बात है। तो जाह्नवी का मतलब है जानू मुनि से उत्पन्न हुई है, उसने निकाली तो वो उन्हें पुत्री के रूप में है, जाह्नवी जानू मुनि की। तो अभी वहाँ एक बात और है, शांतनु महाराज वहाँ गंगा जी के साथ उसका विवाह हुआ था, और वहाँ ही ये जो है देवव्रत ये अपने भीष्म पिता वहाँ उत्पन्न हुए थे। तो उसके जानू उसके नाना हुए। तो अभी उसमें यह बात है कि देवव्रत को तो चले गए थे गंगा जी के सरस्वती के पास, कुछ बड़े हुए तो उसको पिताजी को फिर सौंप दिया, बोला आप संभालो, और गंगा जी फिर गंगा में चली गई थी, अदस हो गई। अभी ये जो देवव्रत है उसका नाना और नानी को मिलते हैं, ये जानू मुनि और नानी दोनों वहाँ रहते हैं, बहुत टाइम से रहते हैं। तो उसने ये बताया जो धर्म मतलब अपना मानव धर्म की शिक्षा जो है वो जानू मुनि ने उसको दिया, वही मानव धर्म की शिक्षा जब भीष्म पिता शयन बाण पर सोए हुए थे तभी उसने युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर करने के लिए वो वहाँ उसने एक कथा की थी, मतलब उसको युधिष्ठिर महाराज को समझाया। तो ये जानू मुनि का वहाँ बहुत सारा विस्तार से वर्णन है। तो ये जानू मुनि का अभी वहाँ आश्रम है, आश्रम नहीं है मेरे एक जाड़, ये है जगह नवद्वीप में, वो जानू द्वीप से भी उसको जाना जाता है जानू द्वीप। तो जानू द्वीप में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वहाँ ऐसे आश्रम रहता था पहले, अभी नहीं है, पेड़ है खाली। तो जब भी लोग मायापुर जाते हैं परिक्रमा करते हैं तो उसका पूरा डिटेल वहाँ जानने को मिलता है, जानू मुनि का ये दानी नदी के बारे में, ऐसे ही उसकी पुत्री रूप में है जानू नदी। तो यह है सब क्रिया है। तो हम लोग ऐसे ही जानू मुनि का बात हुआ। तो अभी हम थोड़ा टाइम है, थोड़ा कीर्तन करेंगे जल्दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नम हरे नम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे नम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे नम हरे नम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे नम हरे नम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
Yeah.
शिल्पपात की जय, गंधा श्रीमद भागवतम की जय, निताय घोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तब कुछ टीका टिप्पणी 5 मिनट है अगर। दिव्यराज बाबू जय राजा।